जाना वाला गिरिवर नंदना ब्रज जाना रंजना यशोदा नंदना ब्रज जाना रंजना यशोदा नंदना ब्रज जाना रंजना यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जाना वाला गिरिवर जय यशोदा नंदना ब्रज जन रंजना यमुना तीरावन चारी तीरावन जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 hare rama hare rama 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 hare hare Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 Nishchay Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Premanande Jai Om Nitalila Pravish Vishnupad Parivar Vikasacharya Ashtotar Shat श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय ओम नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परिवार सिखाचार्य अष्टोतरशत श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय जय श्री श्री गौर निताय की जय युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय विश्व मंगल पतित पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी बोरीवली रथ यात्रा महा महोत्सव की जय सब वेद भक्त वृंद की जय निधाई गौर हरि प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री श्री चैतन्य मनोमीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा पदामय्यं ददाति सौपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुना वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखावनिन्दान् हे कृष्णा करुणा दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते सप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीमाताजि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनये पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो दिजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण। तो रविवार के इस प्रीति भोज उत्सव में प्रीति भोज सत्संग में आए हुए सभी भक्तों का आजीवन सदस्यों का सभी दर्शनार्थियों का इस राधा गिरधारी मंदिर के प्रांगण में स्वागत है। इस बंबई जैसे महानगर में व्यक्ति 6 दिन तक अपना व्यवसाय या भौतिक कार्य करने के बाद ऊब जाता है। ये जितने भी भौतिक कार्यकलाप हैं भले मोहवश उसमें हमको आसक्ति रहती है लेकिन ये सब उबाऊ हैं। 6 दिन का परिश्रम करता है ऑफिस में लेकिन 7वें दिन रविवार को बस छोड़ो इसको है? और छोड़कर कुछ रेस्ट चाहता है व्यक्ति। तो कुछ भौतिकवादी लोग हैं वो 12 बजे तक सोए रहते हैं 1 बजे तक मुश्किल से अब थोड़ा। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं है? वे जैसे ही अपना समय मिलता है तो दौड़कर मंदिर में आ जाते हैं। और मंदिर में भी वैसे तो भारत है तो यहाँ तो मंदिर तो बहुत हैं लेकिन एक हम अन्य मंदिर में जाते हैं और एक हम इस्कॉन के मंदिरों में आते हैं उसमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है। मंदिर भगवान तो सभी मंदिरों में है, हम नहीं कह सकते कि नहीं इस्कॉन में है और दूसरी जगह नहीं है। लेकिन दूसरे मंदिरों में जाना और यहां आना उसमें बहुत अंतर है। यहां विशेषता यह है कि यहां पर भगवान के भक्तों का संग उपलब्ध है, ये सबसे बड़ी बात है। और भगवान के भक्तों का संग से सबसे बड़ा लाभ होता है वो है भक्ति। भक्ति जो है ये हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। जैसे हमारे एक महान आचार्य और भागवत के महान टीकाकार महाभागवत हुए श्रीपाद श्रीधर स्वामी, ये बहुत सुंदर एक मनुष्य जीवन के बारे में और भक्ति के बारे में कहते हैं कि योने सहस्त्राणि बहूनि गत्वा दुखेन लब्ध्वापि च मानुष्त्वं सुखावहम येन भजन्ति विष्णु तेवे मनुष्यात् सुखावहेन ये न भजन्ति विष्णु तेवे मनुष्य आत्मनि शत्रु भूता। वो कहते हैं कि योनि सहस्त्राणि बहूनि गत्वा, जीव जो है बहुत बहुत योनियों में है, सहस्त्राणि सहस्त्र योनियों में, वैसे तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, ये सब गत्वा बहूनि गत्वा ये सब पार करने के बाद है, और इन सभी योनियों में जितनी भी योनियां प्राय दुखेन लब्ध्वा, ये सब जो भी योनियां हैं वास्तव में जीव को दुख ही प्रदान करती है। हालांकि इन योनियों में भोग है वो है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है, कोई दुकान भी नहीं है और कुछ जिम्मेदारी भी नहीं है, लेकिन फिर भी सभी योनियों में दुख ही है। हम तो जब प्रातः काल आप कभी कभी मंगला आरती में या मंदिर में आते हैं प्रातः, सुबह 4:30-5 बजे हम देखते हैं जैसे स्टेशन से उतरे तो मुर्गियों का गाड़ी लगा रहता, पूरा मुर्गी भरा हुआ है अंदर, और वो मुर्गियों को जब उतारते हैं वो जो कसाई आप देखे ना स्टेशन के बाहर, तो ऐसे 4-4, 5-5 मुर्गियों को बंधा रहता है और फट ऐसा करती है और वो उतार उतार के वो अपने उस शोकेस में डाल देते, वो मात्र फड़फड़ा सकती है कुछ भी नहीं कर सकती, और कुछ देर बाद जब ग्राहक आता है तो उनके पंखों को ऐसा छील दिया जाता है, वो फड़फड़ाती रहती है। और एक जगह हम पहले भाईंदर में जाते थे, वो खारी गांव सत्यनारायण मंदिर, उसके आगे एक मुर्गी का दुकान था, तो उसमें तो वो करता था ऐसा मुर्गी को गरम गरम पानी में ऐसा डाल देता, तो ये जो हमारे संत लिखते हैं हम देखते हैं आंखों से, लेकिन इससे द्वारा हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते। जैसे एक अवतार हुआ दत्तात्रेय, वे जब पृथ्वी में भ्रमण करते थे तो कहीं से भी ज्ञान लेते थे और वहां ही गुरु बना देते थे, ये भी हमारा गुरु है, पृथ्वी को देखते थे तो ये भी हमारी गुरु है, एक वेश्या को देखा तो उन्होंने ये भी हमारी गुरु, मतलब शिक्षा। तो जहां भी हम देखते हैं ऐसे योनियों का दुख है, कई योनियों का दुख है, सभी योनियों में देखेंगे तो दुख ही जीव पाता है। तो दुखेन लब्ध्वा, सभी योनियों में जीव भ्रमण करने वाला दुख पाता है। आप देखेंगे बंबई में तो बहुत देखने को मिलता है प्लेटफॉर्म पर, प्रातः 4:30-5 बजे भी वो टोपला लेके मच्छी बेचने वाले आ जाते हैं, लेकिन उस समय उनकी टोपली में अभी ताजी ताजी मच्छी होती है, वो सब कूदती है तड़पती है, ऐसा तड़पती है जैसे आप रेगिस्तान के मरुदल प्रदेश में हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है और गला सूखा जा रहा है और पानी की बूंद ना मिले, और उस समय हम लोग कैसा तड़पते हैं, ऐसे वो मछली बिना जल के तड़पती है, तड़पते तड़पते फिर शांत हो जाती है, और तड़पते तड़पते कई लोग तो उसको काट लेते हैं तड़पते तड़पते। तो योनि सहस्त्राणि बहूनि गत्वा, ऐसी बहुत सी योनियों में हमने भ्रमण किया है, जीव भ्रमण करता है, और सभी योनियों में दुख मात्र। एक एक योनि की क्या चर्चा करें हम, तो अभी तो नहीं आता, पहले इन कुत्तों को पकड़ने के लिए नगरपालिका की गाड़ियां आती हैं, आपने देखा है उनको, हम तो देखते हैं खड़े रहकर और फिर देखते हैं कि क्या जीव दुख पा रहा है, वो इतना बड़ा सांड सा लेकर आते हैं और कुत्ते को गले में ऐसा पकड़ लेते हैं, पकड़ के वो गाड़ी में डालते हैं, कुछ नहीं कर सकता अन्य मनुष्य योनि में, तो फिर भी अगर कोई हमको कुछ करे तो हम थोड़ा दादागिरी बताते हैं, लेकिन इन योनियों में तो कुछ नहीं कर सकता। लब्धवा दुख आपी, सभी योनियों में दुख है बस, कुछ भी नहीं। यहाँ अभी लाइट चला जाए तो हम बोलेंगे अरे गर्मी लग रहा है, गर्मी लग रहा है, बेचारे रोड पर घूम रहे हैं, इतना ताप है, क्या कहाँ पंखा है, है? और कुत्ता की योनि में आप देखेंगे तो उसके शरीर में कई प्रकार के वो बड़े बड़े कीटाणु, उसको काटते हैं वो बेचारा कभी कभी ऐसा करता है, कभी पूंछ की तरफ बहुत करता है, ऐसी ऐसी योनियों में दुख है। तो सभी योनियों में जीव दुख प्राप्त करता है। लब्धवा अपि और च मानुषम, इन सब दुखों को उस पार करते करते भगवत कृपा से लब्धवा दोनों में वो मनुष्य जीवन को प्राप्त जीव को होता है। कब? भगवान की कृपा। भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट या जो उपहार है जीव को वो है मनुष्य। क्यों? क्योंकि ये सब योनियों में जो दुख है उसका निवारण हो सकता है, इस योनि में वो निवारण कर सकता है। ना कोई कहे हमको तो मालूम नहीं हम पिछले जन्म में मुर्गी थे कि क्या थे, भले मालूम नहीं है लेकिन आप रास्ते में देखकर तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो सत्य बताता हूं, जब प्लेटफॉर्म पर किसी ऐसा हाथ नहीं है पांव नहीं है और बहुत भिखारी है, बहुत गंदा और घसीटता हुआ चलता है, ऐसा हाथों में चप्पल पहन के चलता है, पांव से नहीं चलता और ऐसा ऐसा चलता है, तो लगता है कि अगर हम भी अगर ठीक कर्म करम नहीं करेंगे तो हमारा दूसरा जन्म ये हो सकता है। अभी भले बड़े सेठ हैं क्या कुछ भी है लेकिन ये हमको भी मिल सकता है अगर हम ठीक से इस जीवन का उपयोग ना करेंगे। तो ऐसी हर जगह हमको शिक्षा प्राप्त है, लेने वाले की है, जैसे देखने वाले की कमी है। गीता में भगवान कहते हैं पश्यन् ज्ञान चक्षुषा, हर दृश्य को ज्ञान की दृष्टि से देखना चाहिए कि ये भी भगवान का अंश है। जीव जो आज हाथ में चप्पल पहन के घसीटा जा रहा है, भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, हैं? कहीं से हाथ में कोड है, कहीं पर अंग इंद्रियां नहीं है, कितना दिन से नहाया नहीं है, कपड़ा बहुत गंदा है और देखकर दया आती है करीब, तो वो भी भगवान का ही अंश है जीव, लेकिन वो इस दुख में क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि जब मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो उसका हमने है उसका महत्व नहीं जाना और उसको खो दिया, तब फिर इस योनियों में हम फिर से आ सकते हैं। तो बड़े भाग्य से इस प्रकार का जो वर्तमान हमको शरीर मिला है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास सुविधा भी है, ऐसे प्रभुपाद जैसे महान आचार्यों द्वारा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। देखिए आपको बैठने के लिए ऊपर पंखा मंदिर ये सब और श्रवण करने के लिए ये सब सुविधा है, लेकिन इसका लाभ नहीं उठाया तो ये हो न सकता है। तो मानुष सुखा वहम ये भजंती न विष्णु, अब जीव जो है हर योनि में सुख को ही ढूंढता है, कोई भी योनि में हो, कुत्ता सुबह उठ के इधर उधर भाग रहा है, कोई भी चूहा भाग रहा है, कोई भी बिल्ली भाग रही है, पंछी भाग रही है, तो सब सुख की तलाश में है। ले और मनुष्य भी सुख की तलाश में है, लेकिन वो जब तक उस सुख को भगवान विष्णु की भक्ति में नहीं देखता, वह सुख प्राप्त करने के लिए अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करता है, ये न भजंती विष्णु, जिसकी तलाश में हम हर योनि में भ्रमण किया, हर योनि में घूमे और ये मनुष्य जीवन भी प्राप्त करके हम घूम रहे हैं उस सुख की तलाश में, लेकिन जब तक हम विष्णु का भजन नहीं करते, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, नते विदु, वो नहीं जानते हैं क्या कि हमारा जो स्वार्थ है, जिस स्वार्थ के लिए हम घूम रहे हैं, वो स्वार्थ भगवान विष्णु के चरण कमल का भजन ही है। ये जब तक नहीं जानते वास्तव में वो मूढ़ है। तो यहां पर श्रीधर स्वामी भी ये न भजंती विष्णु, अपना हित स्वार्थ समझकर जो भगवान विष्णु का भजन नहीं करते हैं, तेवे मनुष्य आत्मनि, वे मनुष्य आत्मनि शत्रु भूता, भले मनुष्य देह प्राप्त हुआ लेकिन वे अपना स्वार्थ भगवान विष्णु के चरण कमलों में नहीं देखते, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, वे अपना स्वार्थ अपना हित भगवान विष्णु के चरण कमलों में नहीं देखते हैं, उनकी भक्ति में उनके भजन में नहीं देखते हैं, तो वे ऐसे आत्मनि शत्रु भूता, ऐसे जीव ऐसा मनुष्य अपनी आत्मा का ही शत्रु है। ऐसी भक्ति अगर मतलब कहने का अर्थ है जो भगवान की भक्ति में अपना हित नहीं देखते हैं या भक्ति में नहीं जुड़ते हैं, मनुष्य देह प्राप्त करके भी वे वास्तव में अपने ही आत्मा के शत्रु। और इसलिए रामायण में भी एक बहुत सुंदर चौपाई आया है, राम जन्म दिन के भीतर वो चौपाई हमारे पास नहीं था लेकिन आज प्राप्त हुआ है। कहते बारी मथे बरु होई न धीर्थ, बारू बारू कहते हैं पानी को, बारी वारी पानी को कहते हैं, बारी मथे बरु होए धीर्थ, धीर्थ कहते हैं घी, कोई बालू को मथ कर हो सके कि घी निकाल दे, हो सकता है कि आप रेत को मथ कर घी निकाल सकते हैं निकाल दें, या शिकता ते बरु तेल, शिकता नहीं बारी पानी को कहते हैं, पानी को मथ कर आप घी निकाल सकें, घी निकालने के लिए आप गांव भी तो नहीं समझते हैं लेकिन गांव में लोग घी जब निकालना होता है तो दही का मंथन करते हैं और दही का मंथन करते हैं तो मक्खन निकलता है, लेकिन कोई पानी को मटके में भर के मंथन करने लगे तो घी निकल सकता नहीं निकल सकता, लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि हो सके कि आप पानी का मंथन करके घी निकाल दो, हो सकता है नहीं हो सकता लेकिन अगर हो जाए तो ये महत्वता उस वस्तु का दिखाने के लिए इस प्रकार कवि कविता करते हैं। हो सकता है कि आप पानी का बिलो कर उसमें से घी निकाल दो, हो सकता है, और शिकता मतलब रेत, रेत को पीस कर हो सकता है उसमें से तेल निकाल दो, बारी मते बरु होई धीर्थ शिकता ते बरु तेल, शिकता कहते हैं बालू को, रेत, अभी तो बंबई में रेत भी देखने को नहीं मिलती, प्रातःकाल जो चैतन्य संगी प्रभु लेक्चर दे रहे थे तो बोल रहे थे स्नान भी करके आप पवित्र नहीं हो सकते हैं जब तक रेत का स्पर्श ना करें भूमि का, और उन्होंने तो बहुत सुंदर बताया कि इतना रेत लेके हाथ को मतना चाहिए, इतना रेत इधर मतना चाहिए, इतना रेत माथे में, इतना रेत पांव में, इतना रेत पन, इतना रेत का अर्थ है जो आंवला होता है, आंवला जितना रेत लेकर उसको यहाँ पर मथो, 20 आंवला जितना मुंह को मथो, फिर हाथ को मथो, 10 आंवला भर रेत शरीर को घिसो, फिर 20 आंवला जितना रेत पांव को घसो और फिर उससे स्नान करो तब पवित्र, उसको स्नान किया जा कहा जाता है। अब तो ये संभव नहीं, कलयुग के जीव के लिए संभव नहीं है, अब कैसे पवित्र होना है ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हरि नाम ही एकमात्र हमारे लिए उपाय है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम।
तो कहा है कि रेत को मथ कर आप तेल निकाल सकते हैं, पानी को मंथन करके हो सकता है कि घी निकाल दो, और रेत को मथ कर हो सकता है कि आप तेल निकाल दो। बिन हरि भजन भवत हरि, ये सिद्धांत अपेल, अपेल मतलब अटल ध्रुव है। बारी मते हऊ बरु होए धीर्त शिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन भवतरिये, ये सिद्धांत अपेल। वो सिद्धांत भले बिगड़ जाए कि भाई बारू को मत कर पानी में से आप घी निकाल सकते हो, ये सिद्धांत है कि नहीं निकल सकता, लेकिन ये सिद्धांत बदल सकता है कि निकाल भी जाए, या रेती को मत कर आप तेल निकाल सकते हैं, ये सिद्धांत बदल भी सकते हैं, लेकिन इस सिद्धांत को बदला नहीं जा सकता कि भगवान का भजन किए बिना भक्ति बिना ये जीव इस भवबंधन से पार हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है, ये सिद्धांत। तो कहने का अर्थ भक्ति है, भक्ति के बिना जीव इस संसार के इन दुखों से पार नहीं हो सकता, भवबंधन से जन्म मृत्यु के चक्कर से पार नहीं हो सकता, ये सिद्धांत इसको कोई बदल नहीं सकता। कहने का अर्थ है कि जीव को अगर इस संसार के दुखों से या भवसागर को पार करना है तो उसको भक्ति ही करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। या मनुष्य जीवन का सार्थकता है तो कहते हैं संसिद्धि, मनुष्य जीवन की संसिद्धि हरि तोषणम, ये मनुष्य जीवन का सिद्धि यही है कि हरि को संतुष्ट किया जाए, पुष्ट किया जाए, संतुष्ट किया जाए। और हरि कैसे संतुष्ट होते हैं तो उद्धव जी को 11वें स्कंद में भगवान उपदेश देते हैं कि न ज्ञान योगे न ज्ञान योगे न, ज्ञान योग के द्वारा या कर्म योग के द्वारा या ध्यान योग के द्वारा मैं संतुष्ट नहीं होता, कोई मुझे को प्रसन्न नहीं कर सकता, मैं मात्र भक्ति योग से ही प्रसन्न होता हूं, संतुष्ट होता हूं। और वह भक्ति मतलब भक्ति इतनी महान, लेकिन प्रश्न होता है कि वो भक्ति मिलेगी कैसे, कहां मिलेगी। आज के इस सत्संग में कितने लोग पहली बार इस रविवार के प्रति भोज में आए, जरा हाथ उठाइए, पहली बार कौन आया है? 3-4 जन है। तो कृपया ध्यान दीजिए आप लोग, भक्त लोग तो ध्यान ही है, उनको तो ध्यान में ही है, लेकिन जो पहली बार आए उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारा भव बंधन कितना दुखमय है, दूसरी योनियों में भी कितना दुख है, फिर मनुष्य योनि में भी आए हैं और इसमें भी अगर हम लापरवाह रहते हैं तो हम अपने ही शत्रु हैं। तो प्रश्न होता है कि भक्ति ही जीवन की सार्थकता है, तो ये भक्ति मिलेगी कैसे, ये प्रश्न श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में भी उठाया माता देवहूति, भगवान सामने हैं, कपिल देव उनके पुत्र रूप में प्राप्त हुए, उन्हें उन प्रभु से उन भगवान से माता देवहूति प्रश्न करती है कि आप भक्ति का वर्णन करते हैं लेकिन वो भक्ति मिलेगा कैसे, वो भक्ति हमें कैसे मिलेगा है? जो भक्ति जीव का लक्ष्य है, जीव का गोल है, जीव का गंतव्य है, वो भक्ति ही कैसे प्राप्त होगा। ध्यान रखिए मैं उस बात पर बोल रहा हूं कि इस्कॉन के मंदिर में आने के और दूसरे के मंदिर में जाने में क्या भेद है, ये ध्यान रखना चाहिए किस बात, किस विषय पर चर्चा हो रहा है। तो वो भक्ति हमको कैसे मिलेगा, भक्त की भक्ति की महत्वता आपने जानी, अनेक योनियों में दुख है और फिर मनुष्य योनि में आकर भी श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अगर वो भक्ति नहीं करता है तो वो अपनी आत्मा का शत्रु है, क्योंकि आत्मा को फिर से अधम योनियों में ले जाएगा, अगर भक्ति नहीं किया तो फिर हम अधम योनि में जाएंगे। लेकिन वो इतनी भक्ति की महत्वता है, वो भक्ति हमको कैसे प्राप्त होगा, जो मनुष्य जीवन का सिद्धि है, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, जो मनुष्य जीवन का गोल है, वो भक्ति हमको कैसे प्राप्त होगा, ये प्रश्न माता देवहूति ने भी भगवान के सामने उठाया। भगवान सामने हम भक्ति के बारे में पूछने की क्या जरूरत है, भक्ति भगवान से भी बढ़कर, ऐसा भगवान से बढ़कर भक्ति ऐसे है कि जिस भक्ति से भगवान भी भक्त्य वश्यता, वो भक्ति जिससे भगवान भी जीव के वश में हो जाते, वो भक्ति कैसे मिलेगा। जिन भगवान के अधीन सारा जगत है, पूरा ब्रह्मांड है, प्रत्येक वस्तु उनके अधीन है, वे प्रभु भी जिसके अधीन हो जाते हैं, वो भक्ति, भक्ति मतलब भगवान से भी करते। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान सब कुछ दे देते हैं लेकिन वो भक्ति नहीं देते, राखे लुकाइया, एक चैतन्य चरितामृत में उस भक्ति से राखे लुकाइया, आपको धन दे देते हैं, आपको पद दे देते हैं, आपको सब कुछ दे देते हैं लेकिन वो भक्ति नहीं देते हैं, नहीं वो राइए लुका, राखे लुकाइया ऐसा शब्द है अंत में, उस भक्ति से लुखा रखते हैं हमको, कौन भगवान, भगवान वो भक्ति नहीं देते हैं। तो फिर वो भक्ति हमको कहां मिलेगा, भगवान तो नहीं देते हैं, भगवान तो जानते हैं कि ये भक्ति मैं दूंगा तो इसके अधीन होना पड़ेगा, सब कुछ दे देते हैं लेकिन वो भक्ति नहीं देते। इसलिए वो चौपाई रामनवमी के दिन मैंने बोला था, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, संत हरि तनु चंदन तनु हरि संत समीरा। इसमें भी ये बताया गया है और माता देवहूति ने जब भगवान कपिल देव से जिज्ञासा की कि वो भक्ति कैसे मिलेगा, तो माता देवहूति भगवान ने भी यही देवहूति माता को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? सताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवन्ति हत कर्ण रसायना कथा तदजोषणात् स्वपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमश्यति। भगवान कपिल देव बताते हैं, सताम प्रसंगा मम वीर संविदो। सताम प्रसंगा, सताम का अर्थ होता है भगवान के भक्त, जो भगवान कृष्ण के, विष्णु के, राम के भक्त हैं उनको सताम कहा गया है। जो निराकारवादी होते हैं उनको ज्ञानी कहा जाता है, जो परमात्मा का ध्यान करते हैं उनको योगी कहा जाता है, और जो भगवान के साकार स्वरूप का जो सेवा करते हैं उनको भक्त कहा जाता है, उनको सताम संत कहा जाता है। सताम, सताम प्रसंगा, सताम मतलब भगवान के जो भक्त हैं वासुदेव परायण, जो भगवान वासुदेव के, भगवान कृष्ण के, विष्णु के जो भक्त हैं, जो सेवक हैं, सताम प्रसंग, ऐसे भक्तों का संग, ऐसे के भक्तों का संग ही, संग में ही हमको भक्ति प्राप्त हो सकता है। सताम प्रसंगा, ऐसे भगवान के भक्तों का संग से ही हमको भक्ति मिल सकता है। बाकी ही भक्ति जो ऐसे कहीं कहीं पर वर्णन मिलता है कि भक्ति का वर्णन करते हैं तो पहले कहते हैं कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग, ऐसा क्रमश वर्णन मिलता है शास्त्रों में। जैसे गीता में भी आप देखेंगे तो पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भगवान भक्ति योग का वर्णन, ऐसा क्रम से आदमी बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदंते, बहुत बहुत जन्म बीत जाते हैं और क्रम से ऐसे भक्ति। लेकिन रूपा जी ये भागवत में तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्ति जो है वो कर्म योग या ज्ञान योग या ध्यान योग के अधीन नहीं है, भक्ति स्वतंत्र है। लेकिन भक्ति में इतनी एकमात्र आकांक्षा रहती है कि उसको भगवान के भक्तों की कृपा या भगवान के भक्तों का संग, भगवान के भक्तों के संग के बिना दुर्लभ। इसलिए राम सिंधु घन सज्जन भी, राम राम है लेकिन राम कोई भक्ति नहीं देते हैं। जैसे समुद्र की तुलना की गई, समुद्र जो है, समुद्र में जल होता है लेकिन हमको क्या काम आता है वो जल है? समुद्र के किनारे भी लोग बिस्लेरी लेकर पीते हैं लेकिन एक आध गिलास लेके समुद्र में से पी लो। राम सिंधु तो भगवान की ही तुलना समुद्र से किया गया, लेकिन राम सिंधु घन, घन बादल, बादल हैं जो वो, उनके द्वारा हमको जो जल मिलता है वो हमारे लिए सुलभ, वो हमारे लिए उपयोगी होता है। हालांकि जल तो वो ही समुद्र का है लेकिन वो बादल प्रदान करते हैं हमको काम आता है। बाकी तो बादल जो है, तो बादलों की तुलना, भगवान की तुलना समुद्र के जल से की गई और बादलों की तुलना भगवान के भक्तों से की गई, समझ गए ना? बादलों की तुलना जो है वो भगवान के भक्तों से की गई है और भगवान की तुलना जो समुद्र के जल से की गई। समुद्र का जल हमको काम नहीं आता है लेकिन बादलों का जल हमको काम है, वो ही तो बादल वो जल प्रदान करते हैं। इस प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान का भक्ति प्रदान कर सकते हैं। और फिर तुलना करते हैं चंदन तनु हरि, चंदन तनु हरि संत समीरा, समीरा आप समझते हैं बादल को, वायु को कहते हैं। चंदन का जो लकड़ी होता है वो चंदन के लकड़ी का तुलना भगवान से किया गया, चंदन का सुगंध का तुलना है। और चंदन का जो सुगंध है उसकी तुलना भक्ति से की गई, लेकिन चंदन की जो सुगंध है, खुशबू है, वो चंदन का वृक्ष हमको नहीं देता है, खुशबू उसकी है, भक्ति भगवान की है लेकिन भगवान नहीं देते हैं। इसी प्रकार चंदन के वृक्ष की सुगंध है लेकिन वो चंदन का वृक्ष हमको सुगंध नहीं देता है। उस चंदन के वृक्ष की जो सुगंध है चंदन की, वो तो वायु वायु हमारे नासिका तक लाता है। तो भगवान के भक्त हैं जो वो समीरा, संत समीरा, भगवान के भक्त जो होते हैं वो वायु के समान है। वो चंदन की सुगंध जो है वो आपकी नासिका तक वायु लाता है, ऐसे भगवान की जो भक्ति है वो भगवान के भक्त आपको दे सकते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों का जो संग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम सुनते हैं छठे स्कंद में जो अजामिल का कथा सुनते हैं, तो उसमें छठा स्कंद जो है वो पोषण तत्व का, जैसे भागवत में 10 तत्व हैं, सर्ग विसर्ग अनुगमन पोषण स्थानम, ये जो 10 तत्व, उसमें छठा स्कंद है जो पोषण तत्व, भगवान किस प्रकार अपने भक्तों का पोषण करते हैं, और उसमें नाम का महिमा बताया गया, विशेषकर अजामिल की कथा में। लेकिन वास्तव में अगर उसमें हम ध्यान देते हैं, ठीक से ध्यान दे देंगे, तो वास्तव में सब ये नाम उनको मिला या अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार हुआ, तो उसमें भगवान के भक्तों के संग का ही महिमा है। हम बोलना नाम, लेकिन भगवान का नाम उसको कैसे प्राप्त हुआ? अजामिल महापापी था, बहुत बड़ा ब्राह्मण था, संस्कारी ब्राह्मण था, लेकिन कुसंग के कारण, जैसे आजकल का टीवी है या इधर उधर हम देखते हैं ये सब कुसंग, पहले तो उसको जंगल में ये दृश्य मिला था, आजकल तो घर घर में ये दृश्य है, और उसके कारण हमारे लोगों के पाप बढ़ते जा रहे हैं। तो वो अजामिल, उसके कारण अजामिल, अजा का अर्थ होता है भगवान, अज भगवान को अज कहते हैं, और अजा मतलब भगवान की माया, मिल मतलब उसमें मिल गया, भगवान की माया से मिल गया, कौन सी बहिरंगा शक्ति, ये जो माया है, तो उसका इतना पतन हुआ माया के कारण, और इतना पाप किया उसने, घोर घोर पाप किया था, अपनी धर्म प्रायणा सती पत्नी को त्याग दिया, अपने धर्मनिष्ठ प्रायण माता पिता को त्याग दिया, निकाल दिया, और सुसंस्कार ब्राह्मण ने एक मदिरा पान करने वाली वेश्या से पुत्र उत्पन्न किए, घोर पाप। ब्राह्मण, सुसंस्कारी ब्राह्मण और मदिरा पान करने वाली वेश्या से संतान उत्पत्ति करना, कितना बड़ा घोर पाप, इतना बड़ा पाप किया था, और उसका एक दिन इतना घोर पाप में सब प्रकार के लूटना चोरी करना, उस वेश्या के डिमांड को पूरा करने के लिए उसने हर पाप उसके बाद किया, लूटपाट करना, मर्डर करना, ये करना, वो चोरी करना, सब कुछ पाप करना, इतना बड़ा पापी। लेकिन एक दिन की बात है कि कुछ साधु, कुछ भगवान के भक्त जो विचरण करते हैं, वे उस नगर में आए जहां अजामिल रहता था, ये इतना बड़ा पापी है। तो उन भक्तों ने, संतों ने कहा कि हमको रात्रि निवास करना है, या कुछ हमको प्रसाद के लिए कुछ भिक्षा चाहिए। तो हर जगह पे, हर गांव में उदंड लड़के होते हैं जो भक्तों का बहुत खिल्ली उड़ाते हैं, है ना, बहुत लोग आपको ऐसा मिलेंगे जो भक्तों का तिलक का खिल्ली उड़ाते हैं। एक भाईंदर में हमने रथ यात्रा निकाला तो जगन्नाथ जी का वो देखते, ये कौन सा मॉडल है, ऐसा बोलने लगा, वो पहली बार देखा कि कौन सा मॉडल है, ऐसा कैसा मॉडल है, आश्चर्यचकित हो गया। तो भगवान का और भगवान के भक्तों का खिल्ली उड़ाने वाले बहुत लोग हर गांव में मिलते हैं, भक्तों को इससे उदास नहीं होना चाहिए। उन साधुओं को कहा कि तुमको भिक्षा चाहिए तो तुम्हारी सेवा करने वाला हमारे गांव में एक बहुत बड़ा महात्मा है अजामिल, इसके घर चले। तो वो साधु चले गए हैं। साधु जो होता है वो अदोष दृष्टा होता है, भक्तों को ये प्रसंग होते शिक्षा, बहुत छोटे छोटे प्रसंग लेने इसमें शिक्षा महान है। वो लोग उनको द्वेषपूर्ण कह रहे थे, लेकिन साधु जो होता है वो अदोष दृष्टा होता है, हैं? वो दोष नहीं देखता कि ये किस प्रकार से, वो अदोष दृष्टा होता है उसमें। हाँ, इन्होंने कहा है चलो हम उनके घर जाएं। वो साधु गए तो कुछ संतों का मत है कि उस समय उसकी गोद में अजामिल का सबसे छोटा पुत्र था, और कुछ भक्त कहते हैं कि नहीं, उस समय अजामिल की पत्नी वो वेश्या गर्भवती थी, ऐसा दोनों मत। जो भी हो, साधु गए तो उस पत्नी कुछ न कहना है कि उस पत्नी ने सोचा कि अरे साधु आए हैं हमारे घर पर और वो हमारा वो पति बड़ा उदंड है, वो पापी है, आया तो साधुओं के साथ वो कर सकता है, कुछ गलत व्यवहार कर सकता है, तो जल्दी से उनको जो भी देना है दान दक्षिणा, जो भी पेटिया देना है, जो भी अन्न इत्यादि जो भी सामग्री देना है दे दें और इनको कहें तो ये विदा हो जाए, नहीं तो वो आके इनके प्रति अगर कुछ ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अजामिल ने पाप सब किए थे लेकिन उसने वैष्णव अपराध नहीं किया था, ये बहुत बड़ा पॉइंट है उस कथा में पूरे अजामिल की। ये भक्तों को ध्यान देना चाहिए है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग तो इतना नाम ले रहे हैं, अजामिल ने तो नामाभास हुआ था, वो तो नाम का महत्व भी नहीं जानता था, वो तो भगवान का नाम है, इस प्रकार विचार करके भी नाम कोई पुकारा नहीं था और उसका उद्धार हो गया, और हम तो कितना नाम ले रहे हैं क्या कर रहे हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इस पूरे प्रसंग में पाप से भी बड़ा है अपराध नामा, उसका अपराध नहीं था, पापी था लेकिन अपराधी नहीं था। ये जो अपराध है, अपराध भगवत प्रेम के बीच में रोड़ा है, कितना भी हमारे पास भक्ति है कुछ भी है लेकिन जो अपराध होता है वैष्णवों के प्रति अपराध, भगवान के कई प्रकार के अपराध हैं, जानना चाहिए। दशनामा अपराध, वैष्णव अपराध, जीव अपराध, सेवा अपराध, ये सब जानना चाहिए, और जानने के लिए सभी भक्तों को काउंसलिंग ज्वाइंट करना चाहिए, काउंसलिंग में ये सब जानने को मिलता है। जैसे हमारा हमारा भाइंडर में काउंसलिंग चलता है तो इसमें वैष्णव सदाचार चलता है, मंदिर में कैसे आना, तिलक कैसे करना, प्रणाम कैसे करना, प्रणाम करते हैं तो कैसे मंत्र का उच्चारण करना। अभी जो हमारा गया शनिवार को काउंसलिंग उसमें ये सब शिक्षा दी गई थी। अभी अगली हमारा पॉइंट है कि कंठी किस प्रकार धारण करना, क्यों कंठी धारण करना, क्यों तिलक लगाना, तिलक से क्या हमको फायदा है, ये सब काउंसलिंग में ये सब होता है। इसलिए मंदिर से बहुत काउंसलिंग चलाए जा रहे हैं, उनमें जाना चाहिए हैं, अपराध के बारे में, तिलक के बारे में, प्रणाम के बारे में, मंदिर में प्रवेश करने के बारे में, वस्त्र धारण करने के बारे में, ये सब प्रभुपाद जी ने और हमारे आचार्य ने सब शास्त्रों से ले लेकर हमको बहुत शिक्षा प्रदान किया कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो सभी भक्तों को इसके लिए काउंसलिंग में रहना चाहिए, हर क्षेत्र में काउंसलिंग है। बंबई चर्च गेट से लगाकर विरार तक काउंसलिंग होता है, यहां तक कि अब तो पालघर तक भी काउंसलिंग होता है, तो उसमें भक्तों को ज्वाइंट होना चाहिए। हम आलस दिखाते हैं, समय नहीं मिलता है, हमारा तो ये समय अनुकूल नहीं है, लेकिन आपका अनुकूल समय पर भी होते हैं है? तो इस प्रकार काउंसलिंग में ये सब सिखाया जाता है, अपराधों से कैसे बचना, अपराध कितने प्रकार के हैं, हम तो दस नाम अपराध सुनते हैं, जीव अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध है। भागवतम के सातवें स्कंद में भी बहुत सारे अपराधों का सूची प्रहलाद महाराज जी से, तो इनसे सब बचना चाहिए। तो अजामिल पापी था लेकिन अपराधी नहीं था, तो उनके घर वो साधु आए और साधुओं को उसने कुछ सेवा किया, वैष्णव सेवा, भगवान के भक्तों का सेवा आपको क्या उपलब्ध नहीं करा सकता। वैष्णव की हुई थोड़ी सी सेवा भी आपको महान महान भय से उबार सकती है। भगवान की प्रातःकाल हम सुन रहे कि भगवान की सेवा से भगवत प्राप्ति होगा या हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा, संशय हो सकता है, लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा करके आपका उद्धार ना हो इसमें संशय नहीं हो सकता। एक रामायण का प्रसंग सुनिए विभीषण जी का। विभीषण जी हमेशा मन में ऐसा संशय करते थे कि ओहो मैं तो राक्षस कुल का हूं, रावण जो राम का द्रोही है उसका भाई हूं, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, मुझे क्या भगवान का दर्शन होगा, मुझे राम मिल सकते हैं क्या। लेकिन जब हनुमान जी गए थे लंका में, अरे हनुमान जी जब लंका में है माता सीता को ढूंढ रहे थे, ढूंढते 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 भोर हो गया, भोर हो गया तो वो देखा कि लंका के बाहर एक कुटिया में 4:30 बजे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम है ना, जैसे 4:30 बजे हमारे मंदिर से ऐसा आवाज निकलता है ऐसा एक लंका जो नीचाचरों की नगरी है, राक्षसों की नगरी है, सब पापाचार में व्यस्त हैं, और लेकिन नगरी के बाहर देखा तो इस प्रकार मंगला आरती किया, ये क्या भगवान के नाम का कीर्तन? हनुमान जी पहले तो आश्चर्यचकित हो गए, कहीं मेरे साथ ठगी तो नहीं हो रहा है। जहां भी उन्होंने देखा मदिरा पान हो रहा है, पशु जीव राक्षस लोग काट काटी कर रहे हैं, सब भोगों में लिप्त हैं, रावण के सब अनुयायी, लेकिन वहां देखते देखते उन्होंने देखा कि यहाँ राम राम, प्रातः काल में सीताराम सीताराम सीताराम, दूर दूर से आवाज। तो हनुमान जी पहले विचार किए, फिर हनुमान जी उतरे, ये है हनुमान जी उतरे और एक ब्राह्मण का ऐसा वेष बनाकर उतरे, और उन्होंने सुना कि इस कुटिया में आवाज आ रहा राम 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 राम, आश्चर्यचकित हो गए। ये भी बहुत बड़ा सिद्धांत है, हनुमान जी तो महान ज्ञानी है, उन्होंने विचार किया कि सुबह 4:30 बजे कोई भगवान का नाम ले रहा है, मतलब यहाँ असली भक्त है, यहाँ नकली नहीं है, यहाँ दिखावा नहीं हो सकता। 4:30-5 बजे कौन उठ के भगवान दिखावा करना है, तो वो दिन को करेगा ना, सब लोग देखेंगे। अब 5 बजे कौन, लोग सब नींद में है ऐसे है, तो इस समय कौन भगवान के नाम का जप कर रहा है? कहाँ दिखावा है, कहाँ असलियत है, इन प्रसंगों से जानना चाहिए कि 4:30-5 बजे लोग इधर देखा है तो 5 बजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ऐसा आवाज गूंजता है इधर, आप 5 बजे आएंगे तो 5:15 बजे तो सब हरे कृष्ण कृष्ण। तो अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो इधर से निकले सोचेगा, हाँ यहाँ पाखंड नहीं है, यहाँ दिखावा नहीं है, 5 बजे भगवान का नाम का कोई ले रहा है बैठ कर, तो निश्चित यहाँ पर भक्ति है। तो हनुमान जी जान गए कि ये इतना समय भोर के समय में अगर भगवान का, तो यहाँ निश्चित कोई भगवान का भक्त है, और तो उधर राम राम हो रहा है तो बाहर से भी जय श्री राम। तो उधर कुटिया खोला, देखा भाई जय श्री राम करने वाले, बहुत सुंदर वार्तालाप है वहां पर, बहुत सुंदर वार्तालाप है, थोड़ा सा सुनना चाहिए। हनुमान जी विचार कर पूछे कि अरे ये नीचासुरों की राक्षसों की नगरी में बंबई में, जहां इतना रविवार में बियर बारों में डांस हो रहा है, तो वहां पर कुछ और हो रहा है, तो वहां पर सिनेमा के गीत हो रहे हैं, तो वहां पार्टी चल रहा है, वहां पर ऐसे इतने लोग भक्ति कर रहे हैं, ये ऐसे कैसे, ये कैसे संभव है? वो आश्चर्यचकित हो गए, रावण की इस राक्षसों की नगरी में जहां सब लोग डिस्को डांस कर रहे हैं, यहां पर ये भगवान का भजन, अरे तुम इस यहां पर कैसे रह लेते हो तुम लोग, यहां है विभीषण जी से पूछा तुम यहां पर कैसे भजन करते हो? तो विभीषण जी उत्तर देते हैं कि हे प्रभु, जैसे 32 दांत के बीच में जीव गुजारा करती है, कितना सुंदर उदाहरण, कितना सटीक उदाहरण है, ये 32 दांत है ना, जीव है, थोड़ा इधर उधरुवी तो कट है ना, आप जो तो है इतना सावधानी रखना पड़ता है, 32 दांत कठोर है, बेचारी थोड़ी बीच में आ गई तो काट देते हैं ये लोग, जरा भी नहीं कि भाई ये है 32 दांतों के बीच में जीव का रहना बहुत एक सीखना चाहिए भक्तों को, बंबई जैसी नगरी में कैसे। तो विभीषण जी कहते हैं जैसे 32 दांत के बीच में जीवा गुजारा करती है, ऐसे मैं इन राक्षसों के बीच में। तो हनुमान जी कहते बहुत सटीक उदाहरण है, सटीक उदाहरण कैसे है, जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, गौर निताय की, हनुमान जी की, विभीषण महाराज की। सटीक उदाहरण सुन दिए, कैसा उदाहरण, आप सबको पता है पहले क्या आता है, जीभ या दांत, पहले दांत आते हैं, माताएं ठीक जानती है, पुरुष है ना, अभी शादी भी नहीं हुआ ना, हो गया शादी, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, कितना लड़का है, एक है, तो आपकी पत्नी माताजी को मालूम होगा कि पहले जीव आती है, प्रभु जी ने बोल दिया दांत, दांत नहीं आते हैं, पहले जीव आती है, और पहले जाता कौन है, जीवा मरते समय तक ऐसी की ऐसी रहती है, इसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं वो ऐसे के ऐसे रहते हैं हमेशा, और ये जो जो कठोर लोग हैं वो गिर जाते हैं। जो भक्तों को कष्ट देते हैं या ऐसा कठोर बन के रहते हैं, बीयर बार जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, सिनेमा का गीत में डिस्को कर रहे हैं, वो गिर जाएंगे, ये दांत गिर जाएंगे, लेकिन जीव ऐसी की ऐसी रहती है। दांत कमजोर हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वो हो जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सुना कि जीवा कमजोर हो गई? मरते दम तक इतना ही टेस्ट आता है, लाओ रसगुल्ला तो देंगे तो इतना ही टेस्ट आता है। तो जीवा की तुलना विभीषण जी भक्तों से करते हैं। भक्त जो होते हैं मरते दम तक ऐसे बिल्कुल ऐसे कैसे रहते हैं, मतलब भक्त सनातन है। तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए कि तुमने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। फिर हनुमान जी ने अपना स्वरूप दिखाया कि मैं राम भक्त हनुमान हूं। तो वहां पर विभीषण जी बहुत सुंदर एक चौपाई बोलते कि प्रभु मेरे मन में संशय था कि मैं असुर कुल का हूं, राम विरोधी रावण का भाई हूं, क्या राम मुझे मिलेंगे? तब वहां एक चौपाई हनुमान जी मिले। अब भरोसो भयो हनुमंता, संत कृपा बिना मिले न, राम कृपा बिना मिले न संता। हमको भगवान के भक्तों का संग मिल रहा है तो समझना चाहिए यही हमारे पर राधा गिरधारी जी की कृपा है कि प्रभुपाद जी ने हमको, या प्रभुपाद जी की कृपा है कि इतने भक्तों का संग मिल रहा है। भगवान के भक्त का संग मिले तो समझना चाहिए ये भगवान की कृपा है हमारे पर। हम समझते नहीं हमारा वो ठीक रहे तो भगवान की कृपा, नहीं नहीं, भगवान की कृपा है कि हमको भगवान के भक्तों का संग मिल रहा है, और भगवान की कृपा से भक्तों का संग मिलता है, और भक्तों की कृपा से भगवान मिलते हैं। इसलिए हनुमान विभीषण जी ने कहा अब भरोसो, अब मुझे भरोसा हो गया कि अब प्रभु मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर राम की कृपा नहीं होती तो हनुमान जी का दर्शन नहीं होता, राधा गिरधारी की कृपा नहीं होती तो इस प्रकार हमको भक्तों का संग नहीं मिलता। जो भक्तों का संग भगवत प्राप्ति करा सकता है, उनकी कृपा से भगवान की भक्ति हमको प्राप्त हो सकती है निश्चित। तो इस प्रकार भगवान के भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। राम सिंधु पे बोल रहा था, तो भगवान के भक्तों के बिना, कृपा के बिना वास्तव में भक्ति नहीं मिलता है। तो इस प्रकार जो अजामिल के घर साधु आए थे उन्होंने सेवा लिया, लेकिन भक्त तो बहुत कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, वो लेते नहीं है, देते ज्यादा हैं। वो जाते जाते उन्होंने कहा, कृपा किया कि हे बेटी, ये जो तुमको पुत्र होगा, जहां गर्भवती का उल्लेख है वहां पर कहते हैं कि तुमको पुत्र होगा और उस पुत्र का नाम तुम नारायण रख लेना। कुछ भी संपर्क लेकिन लव मात्र साधु संघ, थोड़ा सा साधुओं का संघ हुआ और वो कहकर चले गए कि नारायण रखना और उसने साधु की बात मान। भक्त की बात जो मान ले उसके उद्धार में क्या संदेह? भक्त जो बताते हैं मान लेना चाहिए श्रद्धा से। भक्तों के संग का लाभ यही है, लेकिन उसकी बात को स्वीकार करें। बात स्वीकार नहीं करेंगे तो जैसे कोई हॉस्पिटल में गया, पूरा हॉस्पिटल में आटा मार के घर आ गया, ना डॉक्टर से मिला और डॉक्टर की बात भी नहीं माना तो वो रूप थोड़ा जाने वाला। तो हो इस प्रकार यहाँ पर ये सब डॉक्टर हैं, इनका जो दवाई देते हैं लीजिए और जो प्रतिबंध रहते हैं उस पर प्रतिबंध रखिए और दवाई लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो इस प्रकार अजामिल को ये साधुओं का संग मिला, उन्होंने नारायण नाम दिया और जब वो घर आया और उनको लड़का हुआ तो उस पत्नी ने भी बताया कि यहाँ पर कुछ साधु आए थे तो उन्होंने कहा कि नारायण नाम रख लेना, तो मैं नारायण नाम, तो अजामिल जी का रख लो, मैं क्या, नाम तो रखना ही है, तो नारायण नाम रख लिया। तो वो बचपन से जी जो छोटा, सबसे छोटा पुत्र था, अंतिम पुत्र था ये, छोटे बच्चों पर ऐसे भी माता पिताओं का बहुत स्नेह रहता है, बड़े पर तो रहता है कि नहीं। तो इस प्रकार वो हर बार जब खाता था, पीता था, सोता था तो हर बार नारायण नारायण, यश नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम, जिनके नाम लेने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और नाम लेने से नामाभास से नष्ट हो जाते हैं। नाम लेने, देखिए नामाभास तीन प्रकार का नाम होता है, एक नामाभास, एक अपराध युक्त नाम, एक शुद्ध नाम। नामाभास उसको कहते हैं कि नाम की महिमा नहीं जानता है कि ये मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, और भगवान का नाम ले रहा हूं ये भाव से भी नहीं ले रहा है, किसी साकेत संकेत में, किसी वस्तु के संकेत में है? संकेत में या किसी के नाम बुलाने में या परिहास में भी अगर कोई नाम लेता है तो उसको नामाभास कहते हैं। उसको नाम का महिमा मालूम नहीं है और उसको ये भी मालूम नहीं है कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं। और इस प्रकार से भी कोई अगर भगवान के नाम का उच्चारण करता है अनजान में भी तो उसको नामाभास कहते हैं, तो उस नाम से भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और तो अगर समझो कोई शुद्ध नाम ले रहा है तो उसके लिए तो क्या गति है। तो इस प्रकार नामाभास था अभी जमीन, लेकिन उसके पाप नष्ट हो गए और भूलवश वे उसको लेने के लिए आ गए यमदूत। देखिए दो बार उनको भगवान के भक्तों का संग मिला जामिल को। पहली बार तो वो तो अज्ञान में नारायण नारायण बुलाया, लेकिन उसमें कोई भाव या श्रद्धा नहीं था। वहां पर हमारे आचार्य ने बहुत सुंदर प्रश्न उठाए हैं कि जब अजामिल ने नाम लिया उसके सारे पाप नष्ट हो गए, और यमदूत लेने आए तो यमदूतों को रोक दिया, यमदूत भी चले गए, उनका वार्तालाप अजामिल ने सुना, तो यमदूत चले गए तो फिर अजामिल भगवत धाम क्यों नहीं चला गया? वो तो वहीं रह गया। वो विष्णु दूतों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन विष्णु दूतों से कुछ कहे उसके पहले विष्णु दूत भी चले गए। विष्णु दूतों के साथ उसका कोई संवाद नहीं हुआ। वो संवाद करना चाहता था, लेकिन वो संवाद करे उसके पहले वो भी चले गए और उधर वो भी चले गए। और प्रसंग बोलेगा नाम से पाप नष्ट हो गए तो फिर वो वैकुंठ क्यों नहीं गया? वैकुंठ उसके बहुत बाद गया है, उस समय नहीं गया जो मिल वैकुंठ, उसमें उसको वो यमदूत छोड़ के चले गए और विष्णु दूत भी छोड़कर चले गए। उसके बाद जब उन विष्णु दूतों का, भगवान के भक्तों का जब उसको दर्शन हुआ है, दर्शन है पवित्र करे ये तुम्हारा गुण, वो नाम से पाप नष्ट हुआ। और जब विष्णु दूतों का उसने दर्शन किया था और संवाद सुना था, तो उसके प्रभाव से अजामिल अब सोया सोया पश्चाताप कर रहा है अपने पापों का। और उस समय भगवान उसको इसलिए वैकुंठ नहीं ले जाया गया कि भगवान चाहते थे कि इसका मति, इसका रुचि हमारे तरफ, इसका आग्रह बढ़े भगवान के प्रति इसका है। नहीं तो हम लोग तो बहुत वो हैं है? एक बार वनमाली प्रभु करें, हमको तो वैकुंठ नहीं आना था, हड़ताल वापस भेजो हमको बॉम्बे में, ठीक था वहां भी हम झंडा ऊंचा कर सकते हैं है? तो भगवान चाहते थे कि इसका हमारे प्रति अनुराग बढ़े। तो जब वो चले गए तो वो अपने पापों के प्रति पश्चाताप करने लगा, मैं कितना बड़ा पापी हूं, घोर पापी हूं मैं, मैंने मेरी सती पत्नी को जो सती धर्म प्रायण थी उसको निकाल दिया, मैं संस्कृत ब्राह्मण होने के बाद, सुसंस्कृत ब्राह्मण होने के बावजूद मैंने मदिरा पान करने वाली वेश्या से पुत्र उत्पन्न किए, मैंने मेरे माता पिता जो धर्म परायण थे जिन्होंने मुझे पाल पोष कर बड़ा किया, मैंने उनका त्याग कर दिया, उनको घर से निकाल दिया, हाय मैं कितना बड़ा पापी हूं, कितना बड़ा पापी, इस प्रकार सच्चा पाप कर लिया। किसके कारण? विष्णु दूतों का दर्शन, भगवान के भक्तों का दर्शन करते ही उसके अंदर ये पश्चाताप होने लगा और वैराग्य है। रामायण में एक चौपाई है, मैं भूल गया, जानिए जब जीव जागा, कहते जीव जागो जीव जागो, लेकिन जीव जागा है इसका कैसे पता चलता है? जब विषय विषय विरागा, ऐसा चौपाई है, जानिए जब जब जीव जागा, जब भय विषय विषय अनुराग विराग, जब जीव को संसार के विषयों के प्रति, भोगों के प्रति जब वैराग्य हो जाता है, तो जानना चाहिए कि अब वो जग गया। जब तक संसार के भोगों की कामना है, ये चाहिए वो चाहिए, आनी और आनी, और चाहिए और चाहिए, तब तक जानना चाहिए कि अब तक हम जागे संसार के भोगों में। अरे माता देवहूति कहती है कि अरे जो बिष्टा खाने वाले सुअर को भी जो भोग प्राप्त हैं उसमें बुद्धिमान मनुष्य, अरे वो भोग जो संसार के भोग हैं वो तो हम सुअर ही सुअर भी प्राप्त करता है, आहार भय निंद्रा मैथुन ये तो सुअर को भी प्राप्त है। जब जीव ये सोचता है अरे इन भोगों में क्या, तब जानना चाहिए अब जागा है। जब जीव जाने जीव जागो जी, संसार के भोगों से जब विषय से विराग होता है तब जानना चाहिए अब जागा, और भगवान के प्रति जब अनुराग होता है तो जानना चाहिए अब भक्त बन गया। वो जागा लेकिन जाके वैराग हो गया, और भगवान के भक्तों के चरणों में अनुराग नहीं है, भक्ति में अनुराग, तब तक अभी जागा है, कुछ एक्टिविटी भक्त नहीं बना है। वो जागा और जाग कर तो लोग बहुत बहुत टीवी चालू कर देते हैं जागते ही, जागा लेकिन जाग कर जब भगवान के चरणों के प्रति अनुराग होए तब चलना चाहिए अब ये भक्त बना। तो इस प्रकार अजामिल पश्चाताप करने लगा, और पश्चाताप करके अपनी पत्नी को बिना बताए उठा और हरिद्वार चला गया। हरिद्वार के एक मंदिर में चला गया और वहां जाकर पश्चाताप करते हुए और फिर भगवान की भक्ति में लग गया। नाम का महिमा तो सुन लिया था और नाम की महिमा में लग गया, तो दो बार भगवान के भक्तों का उसके जीवन में आगमन हुआ। एक बार भगवान के भक्तों के संग के कारण उसको नाम का प्राप्त हुआ, और दूसरी बार भगवान के भक्तों का दर्शन होने के कारण उसका भगवान के प्रति और नाम के प्रति अनुराग पैदा हुआ। तो भगवान के भक्तों का संग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यही है, हम अन्य मंदिर में जाते हैं और प्रभुपाद जी के यहाँ कौन के मंदिर में आते हैं, ये डिफरेंस है। यहाँ पर हमारे भगवान, हमको भगवान के भक्तों का संग मिलता है जिसके कारण हमको भक्ति प्राप्त होता है। इसलिए जहां भगवान के भक्तों का संग है वहां हमको जाने के लिए आग्रह करना चाहिए, जिसके कारण हमको वो सदुर्लभ भक्ति, बहुत दुर्लभ है वह दुर्लभ भक्ति भगवान के भक्तों के संग से मिल सकती है। ये भगवान कपिल देव ने भी अपनी सताम प्रसंगा मम वीर संविदो इस श्लोक में भी यही भगवान बता रहे हैं, मेरे भक्तों का संग। और भगवान राम ने सबरी को भी भक्ति का उपदेश देते हुए यही बताया, पहले यही बताया, पहली भक्ति संतन कर संग, सेम बात है, दूसरी मम कथा। वहां कपिल देव भी कहते हैं मम वीर संविदो, यहां भगवान राम कहते हैं मम कथा प्रसंग, दूसरी मम कथा प्रसंग। तो ये दोनों वस्तुएं हमें प्रभुपाद जी के मंदिरों में मिलती है, क्या सताम प्रसंगा भगवान के भक्तों का संग, और मम वीर संविदो भगवान की गुणावली गुण कथा, भगवान की लीला कथा गुणावली ये का श्रवण भी हमको भगवान प्रभुपाद जी के इस इस्कॉन के द्वारा बनाए हुए मंदिरों में प्राप्त होता है। इसलिए इस मंदिर में आने का, रविवार प्रतिभूत में आने का ये लाभ है, ये लाभ हमको उठाना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, हरिनाम संकीर्तन की, सब वेद भक्त वृंद की, निदाई गौर हरि प्रमानंदे। विशेषकर कोई भी मुझके नहीं जाएगा, कुछ अनाउंसमेंट है, सबसे पहला अनाउंसमेंट है, आप सभी जानते हैं।